रौनक ने उसके साथ सामान्य व्यवहार किया, साथ ही रौनक ने उस पर चांटे मारे तो उसकी झिझक, उसका पछतावा, सब कुछ निकल गया था। अब आगे आहान अब थोड़ा शांत हो गया था। रौनक भी आहान के पीछे पीछे रश्मि के पास बैठ गई थी। इस वक्त रौनक ने अपना सर झुकाया हुआ था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसमें वाकई आहान की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, और इस गलती के लिए वो कभी भी आहान सिंघानिया से शादी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही रौनक वहां आई, आस्था और रश्मि दोनों ने उसे गले से लगा लिया था। राधिका ने जल्दी ही रौनक के लिए नाश्ते की प्लेट लाई थी, लेकिन रौनक ने खाने से मना कर दिया था और बिना किसी भाव के राधिका की ओर देखकर दबी आवाज में बोली, मैं फ्लैट में जाना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। रौनक के ये कहने पर सबके चेहरे मायूस हो गए थे, लेकिन नानी माँ तुरंत उठी और रौनक के पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोली, मेरे बच्चे, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस वक्त आपको हमारे साथ रहना होगा, हम आपको इस स्थिति में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकते। आस्था भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं रौनक, तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम हमारे पास रुको प्लीज़। तब रौनक थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, मुझे किसी की मदद की और ज़रूरत नहीं है और किसी के रहमो करम की तरस भरी नज़रों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली अपने आप को संभाल सकती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे अपने फ्लैट में जाना है, मैं अब जा रही हूँ। ऐसा बोलकर रौनक जल्दी ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। वहीं रश्मि थोड़ा सा तेज चिल्ला कर बोली, रौनक रुक जाओ, आई सेड स्टॉप इट, रौनक तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितनी ज़िद्दी हो, लेकिन तुम्हें अब अपनी बड़ी बहन की बात माननी ही होगी, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहते हुए रश्मि ने तुरंत अपने हाथों को रौनक के सामने जोड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ रौनक, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। रश्मि को इस तरह टूटा हुआ देखकर आकाश बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो भी रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और सर्द आवाज़ में बोला, रश्मि अगर कह रही है तो तुम कहीं नहीं जाओगी रौनक, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती और इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ जाती, तब हम तुम्हें कहीं और जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दे सकते। वहीं आस्था मायूस सी रौनक के सामने आकर खड़ी हो गई थी और उदास होकर बोली, रौनक प्लीज़, हम तुम्हें इस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। रौनक अब सबकी बातें सुनकर इरिटेट हो गई थी और थोड़ा सा चीखते हुए बोली, बस कीजिए प्लीज़ प्लीज़, मुझे किसी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मुझे अकेले रहना है, लीव मी जस्ट अलोन, क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसा बोलकर रौनक चीखने लगी थी। तभी अरमान आगे आया और उसने जाकर रौनक के सर पर हाथ रखा और धीरे से बोला, तुम अरमान सिंघानिया की बहन हो, अरमान सिंघानिया अपनी बहन को यहाँ से कहीं जाने की इजाज़त नहीं देगा। अरमान के ये कहने पर रौनक जो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, वो एकदम से ही चुप हो गई थी और बिना किसी भाव के उसने एक बार फिर अरमान को गले से लगा लिया था। अब सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी और आंखों में आंसू थे, वो समय ही कुछ ऐसा था। तभी नानी माँ मन में खुद से बोली, ये बच्ची जो हमेशा चहकती मुस्कुराती रहती थी, इसकी सारी मुस्कान चली गई है, मुझे ही अब कुछ ना कुछ करना होगा। नानी माँ अभी ये सोच रही थी, वहीं दादाजी सोच रहे थे कि आखिरकार वो कब मौका देखकर रौनक से आहान की शादी की बात करेंगे, क्योंकि उन दोनों का उस बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आहान से तो वो बात भी कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से रौनक बर्ताव कर रही थी उससे शादी की बात करना आसान नहीं होगा। वेल, अरमान ने रौनक को जल्दी से कंधों से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ले आया था जहाँ आहान बैठा हुआ था। ये सारी चीज़ें आहान देख रहा था और साथ ही साथ सोच रहा था कि उसकी होने वाली बीवी कुछ ज़्यादा ही हवा में रहती है और अपनी हवा में रहने की आदत अब मुझे निकालनी ही होगी और उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आना होगा, कहीं ना कहीं आहान ये सोच रहा था। रौनक जैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठी, आहान का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। आहान को देखते ही रौनक ने मुँह फेंक लिया। तब अरमान ने आहान की ओर देखा। आहान तुरंत वहाँ से उठ खड़ा हुआ और सीधा अपनी थाली हाथ में लेकर जाकर हॉल में बैठ गया था और वहाँ जाकर नाश्ता करने लगा और मन ही मन में चिढ़ते हुए सोच रहा था, ये हवा में रहने वाली मुझे देखकर तो इस तरह से बर्ताव कर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो, किस तरह से चिढ़ रही है मुझसे, कल रात किस तरह मुझे किस पर किस किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये सोचकर वो सब याद आते ही आज आहान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वेल, जल्दी ही सबने थोड़ा सा रौनक को कुछ खाने के लिए प्रेशराइज किया, उसने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लिया था। आस्था ने भी अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और अरमान की ओर देखकर बोली, आप हमें कॉलेज छोड़ दीजिए, उसके बाद आप ऑफिस जाएंगे। आस्था के ये बोलते ही अरमान ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी थी और आस्था को लेकर वो कॉलेज के लिए चल पड़ा था, क्योंकि रौनक के कुछ दिनों के लिए उन्होंने घर पर ही आराम करने का डिसीजन लिया था कि रौनक को कुछ दिनों तक आराम करवाएंगे, उसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन कर लेगी। अरमान आस्था को लेकर गाड़ी में कॉलेज की ओर रवाना हो चुका था, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। फोन किसी और का नहीं बल्कि सुमित का था। सुमित का फोन आने पर अरमान हैरान हो गया और बोला, क्या बात है सुमित, तुमने इस वक्त फोन किया? तब सुमित बोला, वो अरमान, एक प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हारी जरूरत है। सुमित के ये बोलते ही अरमान ने सिर्फ इतना ही बोला, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि अरमान जानता था कि सुमित इस तरह से तो फोन नहीं करता है, अगर सुमित का फोन आया था तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। इसीलिए अरमान सीधा आस्था को कॉलेज में ड्रॉप करके सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर एंजल बड़े ही ध्यान से आस्था की तस्वीर को देख रही थी, क्योंकि प्रॉपरली उसने आस्था की तस्वीर पूरी बनने नहीं दी थी, थोड़ी सी तस्वीर में चेंज करवा दिए थे। वो जो आर्टिस्ट था वो आंखें आस्था की ही बना पाया था, लेकिन उसके नाक, गाल, होंठ सब कुछ चेंज थे, जिसकी वजह से वो लड़की पूरी चेंज हो चुकी थी। और असली गोरी कौन थी और कैसी दिखती थी, असली फोटो कैसी होती, इसका अंदाजा एंजल को भी नहीं था, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा चालाकी से उस बुजुर्ग चौकीदार से लड़की का गलत स्केच बनवाया था। और फिर अविनाश के कहने पर उसने शहर भर में वो पोस्टर भी लगवा दिए थे और उन पर अच्छा खासा मोटी रकम भी इनाम के तौर पर रखती थी। वहीं अविनाश तो सिर्फ आंखें देखकर ही समझ चुका था कि जरूर ये उसी की बहन है, क्योंकि उसकी आंखें और अविनाश की आंखें दोनों ही एक दूसरे से मिलती जुलती थी। हालांकि अविनाश आस्था से मिल चुका था, लेकिन उस वक्त वो खुद एक स्थिति में फंसा हुआ था, तो वो उस वक्त आस्था पर ध्यान नहीं दे पाया था। इस वक्त अविनाश अपने दादाजी से बात कर रहा था। उसके दादाजी अविनाश को डांटते हुए बोल रहे थे कि तुम्हें अब वापस आ जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं और वैसे भी मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा है, और तुमसे मैंने एक वादा लिया था, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने वादे को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ोगे। फ्लैशबैक।
जब अविनाश आस्था को ढूंढने के लिए इंडिया आ रहा था, तब अधिराज जी ने उससे वादा लिया था कि वो आस्था को तो ढूंढने जा सकता है, लेकिन वो उस खूनी को, उस डॉक्टर को ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अधिराज जी उसका सनकीपन देख चुके थे और वो अविनाश को खोना नहीं चाहते थे। एक तरह से वो डरे हुए थे, उनका डर आज तक खत्म नहीं हुआ था, तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो सिर्फ अपनी बहन को वहां से ढूंढ कर लेकर आए, लेकिन उस डॉक्टर से किसी तरह का कोई वास्ता ला रखें। हालांकि अविनाश का इरादा तो उसे डॉक्टर को ढूंढ कर उसे मौत के घाट उतारने का था, लेकिन अब अपने दादाजी के वादे के चलते वो मजबूर हो चुका था और उसने अब डिसीजन ले लिया था कि वो उस डॉक्टर को नहीं ढूंढेगा, लेकिन अपनी बहन को वो जरूर ढूंढेगा। और एक बार अगर आस्था उसे मिल जाती है, उसके बाद वो किसी न किसी तरह से अपने दादाजी के वादे से आज़ाद होकर उस डॉक्टर को भी मौत के घाट उतार देगा। लेकिन फिलहाल उसके दादाजी के वादे ने उसके पैरों में जंजीर डाल रखी थी, जिसकी वजह से वो डॉक्टर को नहीं ढूंढ रहा था। उसके बाद वो उस डॉक्टर को खौफनाक मौत देगा। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया जल्दी ही सुमित के होटल में पहुंच चुका था, और जैसे ही वो वहां गया, उसने देखा कि सुमित होटल के बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। अब जैसे ही सुमित ने अरमान को देखा, वो तुरंत उसके पास गया था और हिचकिचाते हुए बोला, वो एक्चुअली कल रात होटल में एक छोटा सा मसला हो गया था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने दारू पीकर हमारे वेटर का सर फोड़ दिया था। उसके बाद मैंने उसे एक VIP कमरे में आराम करने के लिए कहा था, लेकिन रात के 2 बजे उसने होश में आने पर पूरे के पूरे होटल में हंगामा मचा दिया। होटल स्टाफ ने जैसे ही मुझे इसकी जानकारी दी, तुरंत मैं यहाँ आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने देखा कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने होटल में काम करने वाले 2 लोगों की बेरहमी से जान ले ली है, और उनकी लाश के पास ही वो आराम से बैठकर खाना खा रहा था। ये देखकर मैं चौंक गया। मैं चाहता तो पुलिस को भी बुला सकता था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में आया कि मैं तुम्हें बुलाऊं। अरमान ने ये सुनते ही थोड़ा सा चौंक गया था। फ्लैशबैक। जिस वक्त रात को 2 बजे के करीब राजवीर जिंदल को होश आया, उसने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी और पूरे के पूरे होटल में बवाल मचा दिया था। सभी सामानों की तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, लेकिन होटल स्टाफ ने सुमित के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया था, क्योंकि सुमित उससे मिलकर उसे वहां से जाने देना चाहता था। लेकिन अब जब राजवीर को ये लगा कि ये लोग उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे, तो उसने भूख लगने का बहाना बनाया कि उसे बहुत जोरों से भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। तकरीबन 3 बजे 2 वेटर उसके कमरे में खाना लेकर आ गए थे, और राजवीर ने मौका देखकर खाने के कांटे, चाकू, चम्मच का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही बेरहमी से उसने 2 वेटर की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, और उसने उन 2 वेटर को बड़ी ही खौफनाक मौत दी थी। जो कोई भी उन लाशों को देख ले तो पूरी तरह सहम जाए, और उसके चेहरे पर इतना सा भी पछतावा नहीं था, इतना सा भी दुख या किसी भी चीज़ का भाव नहीं था। सुमित जब सुबह उसे देखने गया, तो वो बड़े ही आराम से सुबह का ब्रेकफास्ट उन दोनों लाशों के बीचों बीच बैठकर मज़े खा रहा था। तब सुमित का दिमाग हिल गया और उसने तुरंत अरमान को फ़ोन कर दिया। अब अरमान जल्दी ही सुमित की बात सुनने के बाद उसे कमरे की ओर जाने लगा था, और जैसे ही वो कमरे में गया उसने उन लाशों को देखा तो अरमान चौंक गया, क्योंकि वो लाश बिल्कुल उसी तरह से थी जिस तरह से अरमान सिंघानिया किसी भी क्रिमिनल को मौत दिया करता था। जिस तरह बड़ी ही बेरहमी से वो क्रिमिनल्स को मारा करता था, ठीक उसी तरह की वो लाश थी। वहीं अरमान की नज़र जैसे राजवीर के चेहरे पर पड़ी तो अरमान के चेहरे का रंग उड़ गया था। वहीं सुमित के मन में अब हुआ कि अब ज़रूर अरमान सिंघानिया इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को अच्छी तरह से सबक सिखाएगा, क्योंकि अगर सुमित चाहता तो नॉर्मली मौत वो राजवीर को दे सकता था। लेकिन जिस बड़े ही बुरे भयानक तरीके से राजवीर ने सुमित के दो वेट्रेस की जान ली थी, तो कहीं ना कहीं सुमित सोच रहा था कि उसको भी इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए, और वो मौत अगर कोई दे सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अरमान सिंघानिया। अब जैसे ही अरमान धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसकी ओर बढ़ने लगा, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भी एक नज़र उठाकर अरमान की ओर देखा, और जल्दी ही राजवीर जिंदल उन लाशों के बीच में से खड़ा हुआ और अपने हाथ और मुंह पोंछने लगा था। फिर वो अरमान की तरफ देखने लगा था। अरमान ने भी एक नज़र राजवीर जिंदल को देखा और अगले ही पल अरमान ने उसे गले से लगा लिया था। अब तो सुमित के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था अरमान सिंघानिया को उसने वहां पर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति यानी कि राजवीर जिंदल को सजा देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये क्या, यहां तो अरमान ने आते ही उसे गले से लगा लिया था। अब तो सुमित की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं राजवीर जिंदल भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इस तरह से गले से लगाया था। अगले ही पल वो अरमान को बड़ी ही बुरी तरह से सूंघते हुए बोला, चेले तुम हो। राजवीर के बड़े ही अजीब सी शक्ल बनाकर अरमान को ये बोलने पर अरमान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान थी। अगले ही पल राजवीर ने बड़ी बुरी तरह से उसे गले से लगा लिया था और बोला, कुछ भी कहो, मैं इस दुनिया में सबको भूल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। ये बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? तभी अरमान को याद आया था कि सुमित ने उसे यहाँ किस लिए बुलाया था, और तभी अरमान बात बदलते हुए बोला, किस लिए नहीं, आप आइए मेरे साथ। ऐसा बोलकर अरमान बड़े ही प्यार से राजवीर को सुमित के ही होटल के बने एक बड़े ही शानदार वीआईपी रूम में ले आया था।